लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, मानव के रूप में हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित हो जाते, घबरा जाते हैं। हमारे विचलन और घबराहट का मुख्य कारण बहुधा व्यर्थ में चिंतित होना है, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा स्वयं से बातें करने लगते हैं, अपने में तर्क वितर्क करने लगते हैं कि कोई भी बात या कार्य कैसे होगा, क्या होगा, हम उसे कर सकेंगे कि नहीं। यदि हम असफल होंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या बोलेंगे, हमारी कितनी बेइज्जती होगी और ना जाने क्या क्या व्यर्थ के ख्याल हमारे मन में उफान लेने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने मन और दिल के चैन को खो देते हैं। हमारी व्यर्थ की चिंता का एक कारण हमारे लिए यह है कि ईश्वर के संग जुड़े रहने वाला विश्वास रूपी डोर हमारा बहुत ही कमजोर है। हम उनमें विश्वास नहीं करते हैं कि वे हमारी चिंता करती और सब समय हमारी सुधि लेते हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे बिना मांगे ही वे हमें अपने सामर्थ्य, अपनी आशीष और अपने प्रेम से सदैव भरते रहते हैं। श्रोताओं, यीशु ख्रिस्त के मंदिर में समर्पण के त्यौहार हेतु लिया गया आराधना विधि चिंतन पाठ हमें ईश्वर के दूत को हमारे आगे भेजे जाने की बात कहता है, जहां वे हमारे लिए मार्ग तैयार करते और हमारे जीवन में अपने कार्यों के निष्पादन में हमारी सहायता करते हैं। आइए हम सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचनों को सुनते हुए अपने जीवन के उन क्षणों की याद करें जहां ईश्वर ने हमारे लिए अपना दूत भेजकर हमारी मदद की। क्या हम उन क्षणों को पहचानते हैं? क्या हम उन क्षणों के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं? क्या हमारे जीवन के वे क्षण हमें अपने विश्वास में मजबूत होने को मदद करते हैं?
जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौटा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के दो बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इसराइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता यीशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तू सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है, यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इसराइल का गौरव।
श्रोताओं, इस वचन का श्रवण हमें अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और उनके द्वारा मिलने वाली आशीष और कृपा दानों को देखने और पहचानने में मदद करे, जो हमारे लिए विभिन्न लोगों के द्वारा आती है, जिनसे हम अपने रोज दिन के जीवन में मिलते हैं। उनका हमारे जीवन में आना हमारे लिए मार्ग तैयार करने की भांति होता है, क्योंकि वे हमारे लिए ईश्वर के दूत स्वरूप स्वयं ईश्वर से भेजे जाते हैं, जिससे हम अपने कार्यों को ईश्वरीय निर्देश के अनुरूप उनकी महिमा में पूरा कर सकें। श्रोताओ, नबी मलाकी के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर के दूत के भेजे जाने की चर्चा करता है, जो ईश्वर का मार्ग तैयार करता है, जिससे ईश्वर हमारे जीवन में आ सकें। हम अपने जीवन में ईश्वर से मिलने की चाह रखते हैं। हम उनकी राह देखते हैं कि कब वे हमारे जीवन में अपने कृपाओं और आशीषों को लेकर हमारे लिए आएंगे। नबी मलाकी के ग्रंथ से लिए गए वचन हमें ईश्वर, जिनकी राह हम देखते हैं, अचानक आने की बात कहता है। शायद वह समय जब हम उनके आने की आशा भी नहीं करते हैं, और यही कारण है कि ईश्वर हमें सदैव अपनी आगवानी करने को तैयार रहने को कहते हैं। जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु का दिन कब और कैसे आएगा। वह चोर की तरह आएगा। श्रोताओं, ईश्वर अपने दूत को कई रूपों में हमारे लिए विभिन्न तरह के लोगों के रूप में भेजते हैं, जिनसे हम रोज दिन अपने जीवन में मिलते हैं। उनका हमारे जीवन में आना और उनके संग हमारी भेंट हमें आंतरिक रूप में परिशुद्ध करती है, अर्थात हम जिन मनोभावों के साथ उनका स्वागत करते और उन्हें अपने जीवन में स्थान देते हैं, हमारे लिए ईश्वरीय कृपा और उनकी आशीष को अनुभव करने में हमारी मदद करते हैं। अतः रोज दिन लोगों के संग हमारा मेल और उनके संग हमारे बात व्यवहार करने के तौर तरीके हमारे लिए वे मार्ग बनते हैं, जहां हम उनके द्वारा स्वयं का शुद्धिकरण करते हैं। इस भांति हम अपने शुद्धिकरण किए जाने के द्वारा ईश्वर के लिए ग्रह्य होते हैं। श्रोताओं, शुद्धिकरण के इस कड़ी में इब्रानियों के नाम लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें स्वयं ईश्वर का हमारे जीवन में पूरे मानव परिवार में आने की बात कहता है। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त रक्त और मांस के रूप में मानव परिवार का अंग बने, जो सभी रूपों में हमारे संग उनकी सहभागिता को व्यक्त करता है। वे ईश्वर के बेटे स्वरूप अपने को अलग नहीं रखते, बल्कि स्वयं परीक्षा का शिकार होती और उन परीक्षाओं में विजयी होते हुए हम सबों को पाप और मृत्यु के जीवन से ऊपर उठाते हैं। वे हमारे जीवन के मार्ग में उतरे, स्वयं मार्ग बनते और हमें ऊपर उठाने हेतु अपने मार्ग में चलने का आह्वान करते हैं। वे किसी दूत को नहीं, बल्कि स्वयं जीवन के दूत बनकर हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। श्रोताओं, यीशु के मंदिर में चढ़ाए जाने का पर्व हमें अपने जीवन की सार्थकता पर चिंतन करने का आह्वान देता है, जिससे हम जीवन दाता यीशु के संहिता के अनुसार मंदिर में अर्पित किए जाने के रहस्य को देखते हुए समझते हैं। दिव्य संहिता के निर्माता ईश्वर का पुत्र यहूदी संहिता के अनुपालन में मानव जीवन के सभी रूपों को अंगीकार करता है। मंदिर में यीशु का समर्पण, जहां हम तीन पीढ़ियों के मिलन को देखते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर के कार्य करने और उनकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप में व्यक्त करती है। हमारे जीवन की सत्यता हमारे अतीत बुजुर्गों में है, जो सिमियोन और अन्ना स्वरूप व्यक्त हैं। वे हमारे जीवन की आधारशिला हैं, जहां से भौतिक जीवन की शुरुआत होती है। मरियम और योसेफ वर्तमान जीवन के वे दूत हैं, जो हमारे संग चलते और माता पिता के रूप में हमें जीवन की राह दिखलाते हैं। तो वही बालक यीशु, जिनमें सबों की निगाहें टिकी हुई हैं, हमारे जीवन के केंद्र बिंदु हैं, जो सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, चूंकि अतीत की निगाहें उन पर टिकी थीं जो इस मिलन में वर्तमान को घोषित करती हैं, और वो घोषित बातें भविष्य में पूरी होती हैं, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान की सारी चीजें ख्रिस्त यीशु के लिए समर्पित हैं। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि यीशु के इस समर्पण में वे हमें अपने जीवन के समर्पण को समझने में मदद करें।
स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया राजा होकर प्रजा बना, स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया राजा होकर प्रजा बना, मेरे गुनाहों की माफी देने, मेरे गुनाहों की माफी देने आया तू, आया तू आया, पर मैंने न तुझको पहचाना, पर मैंने न तुझको पहचाना, क्षमा करो देने आया पापियों का।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को जयंती वर्ष के लिए विशेष आम दर्शन समारोह में मरिया मगदलेना के जीवन पर चिंतन किया। 1 फरवरी को जयंती वर्ष के विशेष आम दर्शन समारोह में पोप ने पौष अष्टम सभागार में एकत्रित विश्वभर से आए आशा के तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा, जयंती लोगों और पृथ्वी के लिए एक नई शुरुआत है, जहां हम सारी चीजों को ईश्वर की दृष्टि से नए रूप में देखते हैं और जानते हैं कि मन फिराव शब्द हमारे लिए परिवर्तन की ओर इंगित करता है। चीजें इस भांति एक नए दृष्टिकोण से देखी जा सकती हैं और हमारे कदम भी नए लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आशा की उत्पत्ति ऐसी होती है जो हमें कभी निराश नहीं करती। धर्म ग्रंथ हमें इससे विभिन्न रूपों में व्यक्त करता है और हमारे लिए भी विश्वास की अनुभूति लोगों से मिलने में होती है, जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती और उन्हें ईश्वर के सपने में प्रवेश करने हेतु मदद करती है। इसके बावजूद कि दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, उनकी महानता जो बहुत छोटेपन में प्रकट होती हमें प्रभावित करती है। सुसमाचार पाठ में मरिया मगदलेना की छवि पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा, करुणा हमारे लिए चंगाई लाती है। इसने मरिया मगदलेना के जीवन को बदल दिया, जो करुणा में ईश्वर के सपने से संयुक्त होकर एक नई दिशा प्राप्त की। संत योहन का सुसमाचार पाठ हमारे लिए पुनर्जीवित यीशु से उसके मिलन का जिक्र करता है। जीवित को हम मृतकों में नहीं बल्कि जीवन में पाते हैं। हम उस व्यक्ति के प्रति गलत फहमी में हो सकते हैं जिससे हम रोज मिलते हैं। जब उसके नाम को पुकारा जाता है तो सुसमाचार बतलाता है कि मरियम पुनः मुड़कर देखती है और इस भांति उसमें आशा का उदय होता है। अब वह कब्र को देखती लेकिन पहले की भांति नहीं होती, वह अपने आंसू पोंछती क्योंकि उसने अपने नाम को सुना है। केवल स्वामी इस भांति हमारे नाम को पुकारते हैं। जब हम पौत्र आत्मा की प्रेरणा और यीशु की पुकार सुनते जो हमें नाम लेकर बुलाते हैं, तो हम उनकी आवाज को पहचानना सीखते हैं। संत पापा ने कहा कि अधिक विश्वास और घमंड में हमारा अहम हमें पुनर्जीवित यीशु को पहचानने में बाधक बनता है। वास्तव में आज भी उनकी उपस्थिति को हम साधारण लोगों में पाते हैं। अपने निराशा और आंसुओं में हम उन्हें छोड़ देते हैं। अतीत के अंधेरे में एक खाली कब्र में देखने के बदले हम मरिया मगदलेना के जीवन की ओर मुड़ना सीखें। वहां प्रभु हमारी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि सच्चे जीवन में हमारे लिए एक स्थान है। अंत में संत पापा ने कहा, हम इस बात पर चिंतन करें हमारा स्थान कहाँ है, मुझे ईश्वर कौन सी प्रेरिताएं प्रदान करते हैं, ये विचार हमें साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ने हेतु मदद करेंगे। दुनिया जब संघर्षों का दर्द झेल रही है, एक अलायंस का गठन किया गया है जिसका मिशन बच्चों के लिए आशा एवं प्रतिष्ठा का निर्माण करना है जो युद्ध के अत्याचार से पीड़ित हैं। अखंड बच्चे अलायंस की घोषणा पहली बार 29 जनवरी को रोम में बाल अधिकारों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान की गई और इसका उद्देश्य युद्ध के कारण बच्चों और उनके परिवारों पर पड़े गहरे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घावों को दूर करना है।
मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार 2025 के विजेता एनजीओ वर्ल्ड सेंट्रल किचन बारबाडोस की प्रधानमंत्री श्रीमती मिया मोतल्ली और 15 वर्षीय इथियोपियाई अमरीकी आविष्कारक हेमेन बेकेले होंगे। यह पुरस्कार 4 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस पर अबू धाबी में एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 2019 में संत पापा फ्रांसिस और अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब द्वारा मानव बंधुत्व पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार जो अब अपने 6वें वर्ष में है, दुनिया भर में कहीं से भी ऐसे व्यक्तियों या समूहों को प्रदान किया जाता है जो विभाजन को पाटने और वास्तविक मानवीय संबंध बनाने के लिए निस्वार्थ और अथक प्रयास करते हैं। इस वर्ष राहत संगठन वर्ल्ड सेंट्रल किचन को मानवीय संकटों से पीड़ित समुदायों को खाद्य सहायता प्रदान करने के अपने काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। 2010 में अपनी स्थापना के बाद से संगठन ने 30 विभिन्न देशों में 300 मिलियन से अधिक भोजन उपलब्ध कराए हैं। पुरस्कार विजेता श्रीमती मिया मोतल्ली को बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में जलवायु परिवर्तन पर उनके द्वारा की गई निर्णायक कार्यवाही के लिए सम्मानित किया जाएगा। 2022 में उन्होंने ब्रिजटाउन पहल शुरू की जो जलवायु संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला में सुधार के लिए तत्काल और निर्णायक कार्यवाही का आह्वान है। उन्होंने 2030 तक बारबाडोस को 100% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया है। अंतिम पुरस्कार विजेता 15 वर्षीय इथियोपियाई अमेरिकी आविष्कारक हेमेन बेकेले होंगे जिन्होंने त्वचा कैंसर के प्रारंभिक चरण को रोकने और उसका इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया एक लागत प्रभावी साबुन विकसित किया है। उत्पाद का वर्तमान में अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में परीक्षण किया जा रहा है। उधर पूर्वी कोंगो के सबसे बड़े शहर गोमा पर कब्जा करने वाले रवांडा समर्थित विद्रोहियों का कहना है कि वे अपनी लड़ाई कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा तक ले जाना चाहते हैं। गोमा के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने के बाद M23 विद्रोही दक्षिण कीवू के प्रांतीय राजधानी बुकाबू की ओर बढ़ रहे हैं जिससे निवासियों में भय और दहशत फैल रही है। मध्य अफ्रीका में तनाव बढ़ रहा है क्योंकि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति ने विद्रोह का विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी का आह्वान किया है और उनके रक्षा मंत्री ने बातचीत का आह्वान को अस्वीकार कर दिया है। DRC के रक्षा मंत्री ने M23 विद्रोहियों के साथ बातचीत करने के बजाय वहां रहने और लड़ने की कसम खाई है। M23 का कहना है कि वह कांगो के जातीय तुत्सी का बचाव कर रहा है। रवांडा ने दावा किया है कि तुत्सी को हुतू और नरसंहार में शामिल अन्य लोगों द्वारा सताया जा रहा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।